गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं अमृतलाल नागर की कहानी सिकंदर हार गया। अपने जमाने से जीवनलाल का अनोखा संबंध था। जमाना उनका दोस्त और दुश्मन एक साथ था। उनका बड़े से बड़ा निंदक एक जगह पर उनकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य था और दूसरी ओर उन पर अपनी जान निसार करने वाला उनका बड़े से बड़ा प्रशंसक किसी ना किसी बात के लिए उनकी निंदा करने से बाज नहीं आता था, भले ही ऐसा करने में उसे दुख ही क्यों ना हो। परिचित हो या अपरिचित, चाहे जीवनलाल का शत्रु ही क्यों ना हो, अगर मुसीबत में है तो वो बेकहे बुलाए आधी रात को भी तन मन धन से उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते थे। उस समय वे अपने नफे नुकसान की तनिक भी परवाह ना करते थे, लेकिन व्यवहार में बड़ी ऊंची तबीयत के थे। अपने टके के लाभ के लिए किसी की हजारों की हानि करा देने में उन्हें तनिक भी हानि ना होती थी। वो स्त्री के संबंध में भी बड़े मनमाने थे। इज्जत आबरूदार लोग उनसे अपने घर की स्त्रियों का परिचय कराने में हिचकते थे और ऐसा करने पर भी वे प्रायः जीवनलाल से जीत नहीं पाते थे। शहर के कई प्रतिष्ठित धनीमानियों की घरेलू अथवा व्यावसायिक अथवा दोनों तरह की आबरुओं को उन्होंने अपने खूबसूरत शिकंजे में जकड़ रखा था, वो भी इस तरह कि हम मासूम हैं, तुम्हारे गुनाह में फंसाए गए हैं, खुद गुनहगार नहीं। जीवन बाबू तकदीर के सिकंदर थे। बहुत से पुरुष सुंदर होते हैं, मगर अक्सर वे ही स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं जिनका सौंदर्य नारी जैसा कोमल ना होकर पुरुष जैसा कठोर होता है। ऐसे लोग पुरुषों के बीच अपनी छाप छोड़ते हैं और स्त्रियों में धाक जमाते हैं। जीवनलाल ऐसा ही रूप और डील डॉल लेकर एक मामूली से क्लर्क के यहां जन्मे थे। अपने स्कूल कॉलेज के जीवन में वे ना कभी फेल हुए और ना प्रमोटेड जैसी निचली श्रेणी में ही पास हुए, मगर अध्ययन प्रिय लड़कों में उनकी गिनती कभी नहीं हुई। हाँ, खेलकूद, नाटक, जलसे जैसे कामों में वे हमेशा चोटी के लीडर माने गए और यहीं से बड़े बड़े घरों के सहपाठियों के सहारे उनके घरों में उनका आना जाना भी आरंभ हुआ। शुरू से ही उन्हें ऊंची हैसियत वालों का साथ पसंद था। 10 वर्ष पहले जीवनलाल ने एक नए स्थापित होने वाले ईंटों के भट्टे पर क्लर्की से अपना जीवन आरंभ किया था और आज वे स्वयं अपने भट्टे के मालिक, रेलवे के बड़े ठेकेदार और अब शहरी इमारतों के भी ठेकेदार हो गए थे। शहर में उनके 8 मकान किराए पर उठे हुए थे। खुद अपने लिए भी एक छोटी सी अमेरिकन स्टाइल की खूबसूरत बंगलिया उन्होंने बनवा ली थी। एक गाड़ी भी थी। रहन सहन ठाटदार था। जीवनलाल देखते ही देखते नगर के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हो गए थे। प्रकाश ब्रिक वर्क्स के मालिक लाला शंभुनाथ उनके एक सहपाठी के चचेरे भाई थे, तभी से दोस्ती हो गई थी। लाला शंभुनाथ यूं तो स्वयं भी एक लखपति घराने के ही थे, लेकिन उनका विवाह एक ऐसे घर की इकलौती लड़की से हुआ जो उत्तराधिकार में इतनी संपदा साथ लाई जितनी उनके सम्मिलित कुटुंब की थी। शंभुनाथ बड़े गंभीर, दुनियादार और कुशल व्यवसाय बुद्धि के थे। उन्होंने अपनी पत्नी की जायदाद को अपने श्रम से कुछ अधिक बढ़ाया। उनकी पत्नी प्रकाशो बीवी यूं बड़ी पति परायण थी, पर उनके घमंड से पति परमेश्वर को भी दबना पड़ता था। शंभुनाथ ने अपनी पत्नी से बकायदा लिखा पढ़ी करके 25,000 रुपया लिया और ईंटों का भट्टा खोला था। जीवनलाल उन दिनों काम की तलाश में भटक रहे थे। संयोग से शंभुनाथ मिल गए। बातों बातों में जीवनलाल ने कहा, यार कोई काम बताओ। तो शंभुनाथ ने कहा, मेरे भट्टे का हिसाब किताब संभालो, अभी 100 रुपये दूंगा, बाद में काम जम जाने पर बढ़ा दूंगा। जीवनलाल जब प्रकाश ब्रिक वर्क्स के क्लर्क बने, उस समय शंभुनाथ की आयु 35-36 के लगभग थी। उनकी पत्नी उनसे 5-6 वर्ष छोटी थी। वे 4 बच्चों के माता पिता थे। जीवनलाल आयु में दोनों से छोटा 25 वर्ष का था, इसलिए घर में बच्चों का चाचा बनकर प्रवेश किया। लाला शंभुनाथ तौलने वाली नजर रखने के बावजूद शक्की स्वभाव के थे। वे शुरू से ही अपने आप को जीवनलाल के व्यक्तित्व की चुंबक शक्ति से बचाते रहे, फिर भी उन्होंने अपने को क्रमशः उनके वश में होते हुए पाया। वे उन्हें छोटे भाई की तरह प्यार करने लगे। 5 वर्षों के अंदर ही जीवनलाल प्रकाश ब्रिक वर्क्स के लिए अत्यंत आवश्यक व्यक्ति बन गए। इनके काम व्यवहार ईमानदारी और कठिन परिश्रमी वृत्ति पर रीझ कर लाला शंभुनाथ जब इन्हें अपना पूरा विश्वास दे बैठे थे, तब एक दिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने जीवन का सबसे करारा धोखा खा गए हैं। उनका अत्यधिक विश्वास पात्र कर्मचारी उनकी अत्यधिक विश्वास पात्री गृह लक्ष्मी के प्रेम का साझेदार बन गया था। प्रकाशो बीवी यों पुरुष सुख की भूखी या अधिक बदनीयत ना थी, उन्हें अपने बाल बच्चेदार और कुलीन होने का भी चौकस होश था। पर हुआ यह कि चतुर दबंग और दूसरों पर हुकूमत करने वाली नारी अपने जीवन में पहली बार किसी पुरुष को सच्चा आदर भाव देने के लिए अपने आप से मजबूर हो गई थी। भट्टे का हिसाब किताब संभालते संभालते जीवनलाल शंभुनाथ की दौड़ धूप बचाने के लिए अक्सर प्रकाशो बीवी की जायदाद का काम भी संभालने लगे। उनकी सलाहों पर चलकर जहां शंभुनाथ को अपने धंधे में मिला, वहां ही प्रकाशो बीवी के बैंक खाते में भी ऐसी बढ़ोतरी दिखाई दी कि प्रकाशो बीवी ने अपने पति पर दबाव डालकर जीवनलाल को उनके भट्टे की नौकरी से हटाकर अपनी जायदाद और अपने पैतृक काम धंधे का मैनेजर बना दिया। उन्होंने कुछ एक जायदादों की खरीदी बेची में प्रकाशो बीवी को कुछ ही महीनों में 5.5 लाख रुपयों का धनी बना दिया। प्रकाशो बीवी बेहोशी में जीवनलाल पर रीझी और जीवनलाल ने बड़ी होशियारी से उस रीझ को भुनाकर ऐसे कमजोर क्षणों में प्रकाशो बीवी को अपने वश में कर लिया कि उन्हें अपने पाप पर पछताने तक का अवसर ना मिला। इसके बाद जैसे शंभुनाथ अपनी पत्नी के पैसे पर अपना स्वतंत्र विकास कर रहे थे, वैसे ही जीवनलाल भी करने लगे। शंभुनाथ उनसे ईर्ष्या करके भी उनसे अपना संबंध तोड़ नहीं पाते थे। प्रकाश ब्रिक वर्क्स फर्म के अधीन ही उन्होंने रेलवे की इमारतें बनाने का ठेका प्रकाशो बीवी के पैसे के बूते लिया। मुनाफे में 8 आने अपने, 6 प्रकाशो बीवी के और 2 आने शंभुनाथ के भी रखे। इन ठेकों का खाता अलग था, फर्म का नाम एक ही था। शंभुनाथ अपनी इज्जत और मुनाफे के लालच में जीवनलाल से अपना नाता ना तोड़ पाते थे। जीवनलाल उनके सामने बराबर यही झलकाता कि दोष मेरा नहीं, तुम्हारी पत्नी का है। स्वयं प्रकाशो बीवी के ऊपर भी वो ऐसी धौंस जमा देता था, तुम रीझी थी, तुम्हारी रीझ में अगर मेरा पुरुष मन लुभा गया तो यह दोष मेरा नहीं। मन ही मन में एक जगह उनसे प्रकाशो बीवी भी कहती थी और शंभुनाथ भी, पर दोनों उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। खास तौर से स्त्री का अपराध जटिल हटीला मन अब अपने अपराध के कारणों को छोड़ने के लिए तनिक भी तैयार ना था। जीवनलाल के जीवन में यही एक घटना घटी हो सो बात नहीं, रईस स्त्रियों पर अपना रंगीन प्रभाव जमाने में वे कुछ तो चतुर थे और कुछ सिकंदर भी। हर शरीफ आदमी अपने घर में उनका आना हरगिज पसंद नहीं करता था, फिर भी कोई उन्हें अपने घर में आने से रोक नहीं सकता था। उनकी आंखों की मोहिनी शक्ति, उनके व्यवहार की मिठास सबको मजबूर करती थी। जीवनलाल की उम्र के 36वें साल में उनके जीवन में एक विशेष घटना घटी। शहर में लोहे के मशहूर व्यापारी लाला मुसद्दी लाल की विधवा बेटी से उनका विवाह हुआ। ये सदाचारी व्यभिचारी अपने होने वाले बच्चे की माता और उसके प्रतिष्ठित नाना कुल की मान रक्षा के लिए ही विवाह करने को मजबूर हुआ था। मगर इस समय तक उनका मन कुछ इस तरह पक चुका था कि वे किसी भी स्त्री के चरित्र पर विश्वास ही ना कर पाते थे। लीला इनके घर में क्या आई, कैद में पड़ गई और ये घर से बंधने लगे। अपने मन का संदेह इन्हें चैन नहीं लेने देता था। दिन में 8-8, 10-10 बार बिना किसी काम काज के ही अचानक घर का चक्कर काट जाते। रेलवे की इमारतों का ठेका होने की वजह से महीने में 15 दिन इन्हें दौरे पर भी रहना पड़ता था। ये रात में अचानक लौटकर अपनी पत्नी के सतीत्व की परीक्षा करने के लिए बहाने बहाने से सारे घर की जाँच किया करते थे। बहाने से पलंग के नीचे झांकना, बहाने से कबर्ड खोलकर देखना, सर्दी की रातों में भी बहाने से छत झांकाना इनकी आदत में शामिल हो गया। लीला 6 महीने में ही इनसे तंग आ गई। वो अक्सर झुंझला पड़ती थी, खींच खींच उठती थी। लीला चतुर गृहिणी थी, वो अपने पति के कारोबार का हिसाब किताब जांचने सहेजने के कारण एक प्रकार से उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी भी हो गई थी। अपने पति के शक मिटाने के लिए उसने प्रयत्न किए, पर जितना ही वो एकनिष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करती उतना ही वे चौंकते जाते थे। एक दिन म्यूनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर श्री त्रिभुवन कॉल के घर उनके बेटे की सालगिरह के उपलक्ष में पति पत्नी की दावत थी। अपने बच्चे विवेक को आया की निगरानी में घर पर छोड़कर वे लोग गए थे। कॉल साहब ने दूसरे मेहमानों के लौट जाने के बाद भी इन्हें रोके रखा। मिसेस कॉल से लीला का घना बहनापा था। कुछ बिजनेस का मामला भी था। म्युनिसिपल बोर्ड शहर में कुछ इमारतें बनवाने जा रहा था। घरेलू रिश्ते ने स्वार्थ का रिश्ता भी बांधा। कॉल साहब के कारण ही जीवनलाल का 30 लाख का टेंडर मंजूर हो चुका था। इसलिए जीवनलाल का कॉल साहब से स्वार्थ अटका था और कॉल का जीवनलाल से। जीवनलाल कॉल साहब का आग्रह टाल नहीं सकते थे। रात के 1 बजे घर लौटने पर कपड़े बदलते समय अचानक लीला ने उनसे कहा, तुम्हारे कॉल साहब की नजर अच्छी नहीं। जीवनलाल के कलेजे में तीर बिंध गया। लीला ने आगे कहा, मनोरमा भी उनकी बदनजर को बढ़ावा देती है। जीवनलाल का खून बर्फ हो गया। लीला मिसेस कॉल के साथ घर के अंदर ही बैठी रही थी। मिस्टर कॉल उनसे बातें करते हुए बीच में 5-6 बार घर के अंदर गए थे। एक बार तो 15 मिनट तक उन्हें अकेले ही बैठा रहना पड़ा था। ये सब उन्हें याद आने लगा। जीवनलाल गूंगे रह गए। एक दिन लीला अपने पिता के घर गई थी। शाम को जीवनलाल जब अपने घर लौट कर आए तो उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपनी ससुराल में फ़ोन किया। पता लगा कि लीला वहाँ से कॉल साहब के यहाँ गई है। जीवनलाल को करारा आघात लगा। वे बिना खाए पिए ही आराम कुर्सी पर पड़े रहे। एक बार जी में आया कि कॉल के यहाँ टेलीफोन करें, मगर फिर उस इच्छा को दबा गए। रात के 10:30 बजे लीला आई। जीवनलाल ने देखा उसके गले में 9 रतन का बड़ा टीकों वाला हार था। पता लगा कि मिस्टर कॉल ने 8,000 के 2 हार खरीदे, एक अपनी पत्नी के लिए और दूसरा जीवनलाल की पत्नी के लिए। 30 लाख के टेंडर का लालच रहते हुए भी ये 4,000 का 9 रतनी हार जीवनलाल के संपूर्ण जीवन को निगलता हुआ नजर आया। जीवन फिर भी खामोश रहे। इसके बाद अक्सर ही जब वे घर लौट कर आते तो उन्हें नौकरों से बच्चे की आया से खबर मिलती कि सेठानी साहब कॉल साहब के यहाँ गई हैं। कॉल साहब से मिलने पर जीवनलाल कट कर रह जाते। इनकी नज़रें उनके सामने उठती ना थीं। उनके सामने इन्हें बार बार ऐसा महसूस होता कि विश्व विजेता सिकंदर किसी साधारण शत्रु से हार गया है। जीवनलाल कॉल साहब से अक्सर मिलने के लिए मजबूर थे, क्योंकि ठेका स्वीकार कर लेने के बाद वे उसमें 2,00,000 रुपया फंसा चुके थे। ये रुपया उनका अपना ना था, 4 महाजनों से लिया गया था और उसका ब्याज उन पर दौड़ने लगा था। लक्ष्मी और महालक्ष्मी के मुंह ने उन्हें झिंझोड़ना शुरू कर दिया। जीवनलाल अपने को कटघरे में बंद शेर की तरह अनुभव करते थे। उनका बच्चा 6 महीने का हो गया था। जीवनलाल अपने बच्चे को बेहद चाहते थे। इसके पहले भी वे पिता बने थे, मगर उन्हें पिता कहलाने का अधिकार इस बच्चे के द्वारा पहली बार प्राप्त हुआ था। जीवनलाल बच्चे की दुहाई देकर अपने पति को इशारों से समझाते और पत्नी सुनकर भी अनसुना कर जाती। जब कभी जवाब देती तो बहुत पैना। आरंभ के 4 महीनों में बात धीरे धीरे ही बढ़ती रही। उनकी पत्नी का श्रीमती कॉल के घर आना जाना दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। अक्सर ही पति पत्नी इनके यहाँ खाने पर बुलाए जाते। अक्सर ही सिनेमा देखने का प्रोग्राम भी बनता था। किसी के घर में कोई खास चीज़ बनती तो दूसरे के यहाँ जरूर भेजी जाती। शुरू में अक्सर और फिर तो सुबह शाम जब भी जीवनलाल घर में रहते, उनके कानों में 2-1 बार ये भनक अवश्य ही पड़ती, मेम साहब कॉल साहब का फोन है। सुनकर मेम साहब ऐसे भागती जैसे लोहा चुंबक की ओर आता है। एक बार शाम को घर लौटकर आने पर मालूम हुआ कि मेम साहब कॉल साहब की कोठी पर गई हैं। रात में लौटकर भी ना आई, ना कोई संदेशा ही मिला। दूसरे दिन सवेरे हार कर स्वयं ही फोन किया। श्रीमती कॉल से बातें हुई। पता लगा कि लीला तो त्रिभुवन के साथ कल शाम ही बाहर गई है, वो शायद आज 3 पहर तक आएगी। जीवनलाल झटका खा गए। अपने ऊपर बहुत संयम रखकर उन्होंने बड़ी विनय के साथ श्रीमती कॉल से कहा, मेरी तकदीर में जो कुछ बदा होगा सो होगा ही, मगर आप अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रही हैं। श्रीमती कॉल ने एक आह भरकर कहा, अब उसका क्या किया जाए जीवनलाल जी। फिर भी अपनी तरफ से मैं ये कोशिश कर रही हूं कि लीला मेरी दुश्मन ना बने, इसीलिए बच्चे को मैंने अपने पास ही रख लिया है, उन दोनों को आजादी दे दी है। मैं अपने बेटे को लेने अभी आता हूं। जीवनलाल की अहंता उनके स्वर में अपने बेटे पर अधिकार करने के लिए केंद्रित हो उठी, किंतु उधर से श्रीमती कॉल का उत्तर आया, इस समय आने का कष्ट ना करें लाल साहब, आपका फोन आने के वक्त मैं कार में बैठ चुकी थी। मैं अभी अभी अपनी चचेरी बहन के यहाँ जा रही हूँ, रुक नहीं सकती और बच्चा भी मेरे साथ ही जा रहा है। जीवनलाल तड़प कर रह गए। उस दिन वो काम धाम में अपना मन ना लगा सके। 3रे पहर लीला अपने बेटे के साथ घर आई तो पति को घर में ही पाया। लीला को देखते ही एक बार तो उनकी आंखों में खून झलक आया, परंतु उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। ठंडे स्वर में बोले, मेरे साथ जो चाहो करो, पर अपने बच्चे के हक में क्यों कांटे बोती हो लीला? सुनकर लीला की त्योरियां चढ़ गईं। कहा, बच्चे से तुम्हें क्या मतलब? सुनकर जीवनलाल के रोम रोम में आग सुलग उठी। तड़प कर बोले, बच्चा मेरा है। वैसी ही तड़प भरी आवाज में लीला का उत्तर मिला, वो तुम्हारे पाप से पैदा हुआ है, तुम्हारे पुण्य से नहीं। उसका बाप एक व्यभिचारी पुरुष है। व्यभिचारी किसी का पिता या पति नहीं होता, वो केवल बुरा होता है। फिर बुरा चाहे किसी भी नाम का हो, क्या फर्क पड़ता है? अहंता की कचोटें ये सुनकर एकाएक थम गईं। करारा आघात खाकर वो मानो जड़ हो गईं। मनोवृत्तियां निकम्मी पड़ने लगीं। आग की लपटें अपने आप ही को खाकर क्रमशः मंद पड़ने लगीं। कमजोरी के अथा सागर में आदर्श के तिनके का सहारा लेकर जीवन लाल ने कुछ उखड़ी और कुछ बुझी सी आवाज में कहा, स्त्री जाति ही तो दुनिया की इज्जत है। औरत को लेकर ही इज्जत का सवाल उठता है। मेरी और तुम्हारी बुराई में बहुत अंतर है, मगर मेरी बुराई की जड़ भी तुम ही हो। पराई औरतों की इज्जत बिगाड़ने में मजा आता है। मैं भी कभी पराई थी, तब उपदेश ना दिया। जीवनलाल सिर झुकाए बैठे रहे, गोया कमरे में अकेले बैठे रहे। फिर तेजी से उठकर बाहर चले गए। उन्होंने इस तरह झटके के साथ कुर्सी छोड़ी मानो पिस्तौल का ट्रिगर छोड़ा हो, इस तरह खट खट गए मानो गोली छूटी हो। जीवनलाल उस समय सचमुच घातक मूड में थे। यदि उनके पास पिस्तौल होती तो शूट कर देते, शायद लीला को, शायद अपने को, या शायद दोनों को ही। हिंसा का जब मूड बना तो अपना सब कुछ, घर मकान बाग बाड़ी जमीन जायदाद इज्जत आबरू दीन दुनिया सब कुछ धूल खाक कर देने की तमन्ना बवंडर सी उठी और रोम रोम पर छा गई। पर वे किसी को न मार सके थे, वे अपने गुनाहों के एहसास से बंधे हुए थे, उस बंधन को तोड़ नहीं सकते थे। जब लाला शंभुनाथ ने उनकी और प्रकाशो बीवी की चोरी पकड़ी, तब प्रकाशो बीवी ने किस दृढ़ता के साथ पति को अपने प्रेम में बाधक होने से रोका था। जीवनलाल तब मनी मन कितने प्रसन्न हुए थे। लाला शंभु के चरित्र में इस प्रकार की कोई खोट ना थी। वे पत्नी के धन से दबे थे और इशारतन जीवनलाल उस दबाव को बढ़वाया ही करते थे, लेकिन अपने केस में वो खुद ही दबे थे। लीला को भी उन्होंने खींच खींच कर अपनी वासना का भोग बनाया था। वे किस जुबान से लीला को श्री या श्रीमती कौल को बुरा कहते? अपने परोपकार से दबाकर उन्होंने कितना ही मध्यम वर्गीय गरीब स्त्रियों और कुमारियों को अपनी इच्छा के आगे समर्पित कराया था। वे अपनी दुराचारी वृत्ति के दास थे। यह सच है कि वे इस लालच से ही परोपकार ना करते थे, पर यह भी सच है कि अपनी इस कुदरती खूबी का फायदा वे अपने तन की प्यास बुझाने के लिए खूब उठाते थे। दिन बीतने लगे। लीला और जीवनलाल की बोलचाल एकांत में एकदम बंद हो गई। चार के समाज में वे अपना रिश्ता कायम रखते थे। लीला उस समय इनसे इतना मीठा व्यवहार रखती थी कि इन्हें भी दिखावे से मजबूर होकर मिठास घोलनी ही पड़ती थी। जीवनलाल अधिक से अधिक घर से बाहर रहने लगे। उन्होंने काम में अपने आप को जी जान से झोंक दिया। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि म्यूनिसिपैलिटी का काम जितनी जल्द हो सके पूरा कर दिया जाए, जिससे कि भविष्य में वे कौल साहब के प्रभाव से बच सकें, शायद तब वे लीला के ऊपर भी अंकुश रख सकें। उनका ऐश आराम छूट गया था। हाँ, फुर्सत मिलने पर वे शराब अधिक पीने लगे थे। वे शहर की जानी पहचानी नजरों से कन्नी काटने लगे थे। हर एक की नजरों में उन्हें अपने लिए मखौल और ताना भरा नजर आता था। अकेलेपन की साथी विस्की के गिलास के साथ सन्नाटे के क्षणों में अक्सर उनके कानों में नगर भर की कांव कांव गूंजा करती। जीवन, तूने बहुत से पतियों पिताओं और माताओं के कलेजे चीरे हैं। तू शहद भरी छुरी है, तेरे कलेजे में घाव करने के लिए भी एक शहद भरी छुरी आई। तेरा रकीब तेरे कलेजे में घाव कर तेरा उपकार करता है। याद कर, जब तू शंभुनाथ पर अपना उपकार लादता था, तब उनकी नजरें तेरी ही तरह झुकी रहती थीं। उस समय उनका चेहरा भी दिल की टीस को उसी तरह कसे रखता था जैसे आजकल तू रखता है। उदार प्रकृति के लोग अपने दुर्भाग्य का बोझ पराये दोषों पर बहुत अधिक नहीं पटका करते। वे अपने दोषों के बोझ से स्वयं दबते और पीड़ा पाते रहते हैं। जीवनलाल ऊंची उम्र में आकर विवाह के चक्कर में फंसे और विवाह के पहले ही बरस में ऐसी गाज गिरी कि उनके जीवन की धारा ही रुकती नजर आई। वे बिजनेस में अपना मन फेंकते ना फेंकते तो क्या करते, दिल के तपते रेगिस्तान को उठाए उठाए उनके प्राण बावले हो जाते। जीवन लाल अपनी निगरानी में बनती हुई इमारतों के नक्शों में, निर्माण में, उसके हिसाब किताब में सुबह से लेकर रात तक हठपूर्वक लगे रहते थे। उन्हें एक क्षण की छुट्टी नहीं थी, उन्हें चैन नहीं था। चैन सिर्फ दो ही चीजों में पाते थे, लीला के घर में ना होने पर अपने बच्चे के साथ खेलने में, या ड्राइंग रूम को बंद कर विस्की और सिगरेट को साथ लेकर दर्द से घुटने और फिलॉसफी सोचने में। 10-11 महीने में ही जीवनलाल का स्वास्थ्य गिर गया। उसके दोस्त अहबाब चिंता करने लगे। लीला ने फिर भी पति के प्रति अपने व्यवहार का रूखापन और कसाव न छोड़ा। लीला इन्हें छेदने के लिए हरदम पैनी बनी रहती थी। लीला किसी भी बहाने सुना सुना कर कॉल द्वारा दी भेंटों का बखान करती। कई गहने कई साड़ियां लीला और मिसेस कॉल के एक से हो गए थे। बच्चे के लिए भी अक्सर आते आते बहुत से खिलौने त्रिभुवन कॉल की भेंट के रूप में जमा हो चुके थे। लीला के कमरे में एक बेशकीमती वार्डरोब भी कॉल की भेंट के रूप में जीवनलाल की दृष्टि में हरदम चुभा करता था। एक दिन बच्चे के कमरे में प्रवेश करने पर जीवनलाल ने देखा कि जहां उनकी लीला की, लीला के पिता की तस्वीरें रखी हुई थी, वहां अब एक और फोटोग्राफ भी शामिल हो गया था। इस फोटो में त्रिभुवननाथ कॉल के एक ओर उनकी पत्नी खड़ी थी और दूसरी ओर लीला। उनका बच्चा विवेक त्रिभुवननाथ की गोद में था। देखते ही जीवनलाल पर ऐसी बीती कि मन का बांध टूट गया। वे स्थिर ना रह सके, आपा खो बैठे। तस्वीर हाथ में लिए हुए वे तेजी से बाहर निकल आए। लीला अपने कमरे में लेटी हुई कोई उपन्यास पढ़ रही थी। जीवनलाल ने कड़क कर आवाज दी, लीला। लीला चौंक गई, यह स्वर नया था। उसने घूमकर जीवनलाल को देखा और बैठी हो गई। जीवनलाल उसके सामने आकर उसकी नजरों में एक बार देखकर क्रमशः अपनी उत्तेजना खोने लगे। एक सेकंड के लिए उनकी गति ठिटक गई। इतने में ही गालियां प्रार्थना बन गई। कलेजे के गुबार निकलते समय अचानक अपील की तरह सामने आए। उन्होंने कहा, तुम भले ही गैर की हो जाओ, मगर मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। मैंने कब छीना है, ये क्या है? जीवनलाल ने तस्वीर दिखलाते हुए कहा, बड़े होने पर ये फोटो दिखला दिखला कर मेरे बच्चों को ये बहकाओगी कि जिसकी गोद में खड़ा है वही उसका पिता है। मैं तुमसे बदला लूंगी, क्योंकि मैं तुमसे घृणा करती हूं, मगर अपने बच्चे से भला क्यों बदला लूंगी? मेरे सवाल से इस जवाब का क्या संबंध है? विवेक से झूठ बोलकर मुझे लाभ क्या होगा? तब तुमने क्यों एक ऐसे शख्स की गोद में देकर उसका फोटो खिंचवाया है जो कि उसका पिता नहीं है लेकिन उसकी मां का? और वो तस्वीर होश संभालने के पहले ही उसके कमरे में रख दी गई है। इसे रखते समय मेरी इच्छा तो ये थी कि तुम्हारी तस्वीर वहां से हटा दूं। विवेक के होश संभालने पर, तस्वीरों के संबंध में पूछने पर, मैं कम से कम अच्छे लोगों का परिचय उसे दे सकूंगी। तुम्हारे जैसे लंपट दगाबाज मीठी छुरी का परिचय देकर मैं अपने बेटे के कान अपवित्र नहीं करना चाहती। लेकिन तुम कॉल या उसकी बदकार बीवी ही, हम तीनों, जीवनलाल की पत्नी ने शेरनी की तरह तड़प कर कहा, हम तीनों में वो पुरुष जिसकी गोद में विवेक खड़ा है उसमें और तुम में वही फर्क है जो गंगा और नाले में है। एक ही पाप के लिए मैं बुरा और वो किसी ऐसे पाप के अधिकारी नहीं है। उनकी पत्नी को इसका पूरा विश्वास है। तुमने मुझसे कहा था कि त्रिभुवन और उसकी बीवी, जीवनलाल ने क्रांतिकारी के समान उत्तेजित होकर पूछा। जीवनलाल की बात तेजी से काटते हुए लीला बोली, झूठ कहा था। क्यों, सुनोगे? लीला बेहद पैने स्वर में बोली, मैं तुमसे घृणा करती हूं। मेरा रोआ रोआ प्रतिहिंसा से हर समय सुलगा करता है। तुमने मुझे मीठे ठग की तरह लूटा और जब मैं एक नई जान से मजबूर होकर तुम्हारे यहां आई तो तुम मेरे ऊपर शक और शुबह से भरी निगरानी करने लगे। मेरे यहां आने के बाद भी खुद सब तरह के दुराचार करते हुए मुझे सतीत्व की जेल में कैद करना चाहा। मैं अपनी इच्छा से सती हूं। एक पुरुष की पत्नी होना मेरे मिजाज को सुहाता है, यह अलग बात है, मगर तुम्हारे दबाए हरगिज ना दबूंगी। ये सोचकर मैंने ये नाटक रचा। जो भेंटें कौल साहब के नाम से आई हैं वो मैंने अपने पिता के पैसे से खरीदी हैं। जीवनलाल विश्वास अविश्वास की रस्साकशी में जड़ से बन गए। कुछ क्षण बाद अचानक उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारे और मिसेस कॉल के कपड़े जेवर जो एक से? मिसेस कॉल के पति से हमें करीब 5 लाख की बचत का काम मिला है। उनसे रिश्ता बनाए रखने के लिए 8-10 हजार रुपए खर्च कर देना बड़ी बात नहीं। तुम्हारी जानकारी में भी दे सकती थी, लेकिन मैं तुमसे घृणा करती हूं। इतने के जीवनलाल ठहाका मार मार कर हंस पड़े और काफी देर तक हंसते रहे। लीला कुछ ना समझकर उन्हें देखती रही। हंसी का दौर कम होने पर हांफते हुए और हंसते हुए कहा, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, वरना तुम्हारे मुंह से आज सच हरगिज न सुन पाता। मेरे मन का मुर्दा बोझ उतर गया। ओ, अब तुम मुझसे घृणा करो लीला, जी चाहे जितनी करो, मेरा जीवन मुरझाएगा नहीं और खिलेगा, नित नया होकर महकेगा। सहसा पासा पलट गया। सती पत्नी को दुराचारी पति की उदारता के सामने अपनी बदला लेने की संकीर्ण वृत्ति मन ही मन बुरी तरह से गढ़ने लगी। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार बुरा भी है और भला भी। सहसा पासा पलट गया। सती पत्नी को दुराचारी पति की उदारता के सामने अपनी बदला लेने की संकीर्ण वृत्ति मन ही मन बुरी तरह से गढ़ने लगी। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार बुरा भी है और भला भी। लोग दूसरों की बुराइयों को मारना चाहते हैं और अपनी बुराइयों के प्रति करुणा प्रकट करते हैं, यह कैसा अन्याय है? अगर जीवनलाल ने एक तरह से अन्याय किया है तो लीला ने दूसरी तरह से। लीला सोचने लगी कि वो नारी होकर भी बेहद कठोर है। वो जीवनलाल से बहुत महंगा बदला ले रही है, क्या उसे अपने पति को घुला घुला कर मार डालना है? लीला ने कनखियों से अपनी पति की ओर देखा। ये कितने दुबले हो गए हैं। पहली बार लीला को अपने पति के स्वास्थ्य की चिंता हुई। वो पति जिससे उसे नफरत थी। गाथा में अभी आपने सुनी अमृतलाल नागर की कहानी सिकंदर हार गया, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे सुमन वैद्या।